23 अगस्त 2023 का दिन मानव इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हुआ है, जब चांद के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की। SBS रेडियो पर मैं हूँ आपके साथ अनीता बरार। हम सब जानना चाहते ही हैं कि इस चंद्रयान मिशन से हमें किस तरह की जानकारी मिलेगी, वो क्या क्या एक्सपेरिमेंट करेगा। तो आज हमें इसी सब की जानकारी दे रहे हैं CSIRO पर से जुड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर निखिल गुप्ता, और वो बताते हैं।
तो इसमें कुछ 6 मेन एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो जो मेन चीज है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, वो रोवर को वहां पे सेट करने तक का सबसे बड़ा चीज वही थी जो रोवर वहां पे लैंड किया। तो ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी। बाकी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं, पर उनके मायने बहुत बड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये पहला रोवर है जो चांद के साउथ पोल पे लैंड किया है, और साउथ पे क्योंकि सनलाइट नहीं गिरती, तो ये अनुमान होता है कि हो सकता है जब से सोलर सिस्टम बना है तब से जो पानी है वहां पे साउथ पोल में अभी भी पानी वो आइस की फॉर्म में होगा। और अच्छी बात ये कि ये जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनमें ये 4 पेलोड्स बोला जाता है, तो कुल मिलाकर 6 पेलोड्स हैं, 4 विक्रम लैंडर में है और 2 पेलोड्स प्रज्ञान रोवर में है। तो इनका ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जैसे कि ये लूनर क्वेक्स को स्टडी करेंगे, ये थर्मल प्रॉपर्टीज को सर्वे करेंगे सरफेस पे, जो थर्मल प्रॉपर्टीज हैं साउथ पोल ऑफ मून की, और ये प्लाज्मा को स्टडी करेंगे बिल्कुल नियर टू द सरफेस ऑफ द मून, और ये मेजर करेंगे एक एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट है नासा का, विच इज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। तो ये 4 पेलोड्स विक्रम में, और 2 अलग पेलोड्स हैं जो प्रज्ञान रोवर में है। तो प्रज्ञान के 2 पेलोड वो स्टडी कर रहेगा कि केमिकल और मिनरल कंपोजिशन क्या है वहां की, जो सॉइल की है, और सेकंड पेलोड वो स्टडी करेगा कि एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी कंपोजिशन क्या है, जैसे अर्थ पे जो आयरन है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनकी कंपोजिशन हमें काफी हद तक पता है, तो वही कंपोजिशन चांद पे कैसी है। तो ये एक अलग पेलोड है। तो अब इन सब एक्सपेरिमेंट्स का, इन सब पेलोड का एक बहुत बड़ा महत्व है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स अब काफी एस्टेब्लिश्ड हैं और टेक्नोलॉजी काफी एस्टेब्लिश्ड है, तो एक तरह से ये सिंपल एक्सपेरिमेंट्स हैं, पर क्योंकि ये चांद पे किए जा रहे हैं तो इससे हमें बहुत कुछ पता चल सकता है कि सोलर सिस्टम बना कैसे था, जो बेसिक मॉडलिंग है सोलर सिस्टम की उसके बारे में बहुत कुछ पता हमें चल सकता है। और सेकेंडली, क्योंकि अब फ्यूचर में वैज्ञानिक और इसरो, नासा और बाकी सारी स्पेस एजेंसीज जो हैं, वो सोच रहे हैं कि कुछ कोलैबोरेटिव मिशंस किए जाएं जिससे कि चांद पे एक बेस एस्टेब्लिश किया जाए। तो अगर जो पानी की खोज वहां पे आइस की फॉर्म पे होती है तो उसको यूज करके उसका ईंधन भी बनाया जा सकता है, क्योंकि पानी वाटर इज बेसिकली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो उससे ईंधन बनाया जा सकता है, फ्यूल बनाया जा सकता है, ताकि चंद्रमा पे एक बेस लेबोरेटरी बनाई जा सके। और बाकी जो फर्दर अवे जो मिशंस हैं, अगर हम वीनस की तरफ जा रहे हैं या फिर हम फर्दर इन स्पेस जा रहे हैं, तो वहां से उन मिशंस को कैरी आउट किया जाए।
जी, आपने और मिशंस की भी बात की, कोलैबोरेशन की भी बात की, तो उसी पे पूछना चाहूंगी कि जैसे चांद की सतह पर लैंडिंग जो थी वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में हुई है या जहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, ग्रेविटी भी नियरली निल है, उससे अगर अलग हटके सोचें तो मार्स की जो स्थिति है वो अलग है, तो क्या चांद से मार्स पर जाने की कुछ तैयारी भी आगे भविष्य में हो सकती है? गगनयान की भी बात हम सुन रहे हैं।
जी बिल्कुल, चांद पे एक बेस लेबोरेटरी बनाने का बहुत बड़ा महत्व है कि जैसे कि आपने बोला कि गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटी है
जी.
वो लगभग 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ है. तो अब एक वेलोसिटी की बात की जाती है एरोडायनामिक्स में, जिसे एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, व्हिच इज द वेलोसिटी दैट यू नीड टू एस्केप द ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट और सेलेस्टियल बॉडी. तो अगर आपको वहां से एस्केप करना है तो आपको वो वेलोसिटी चाहिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ग्रेविटेशनल फोर्स. तो क्योंकि चांद पे ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ी कम है, तो जो फ्यूल चाहिए, जो ईंधन चाहिए वो एस्केप वेलोसिटी के लिए, वो बहुत कम लगेगा अगर हम चांद से वो एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करते हैं, फर्दर स्पेस मिशंस कैरी आउट करते हैं.
अच्छा.
तो ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है कि चांद पे वो लेबोरेटरी बनाने का. और दूसरी बात कि क्योंकि हम साउथ में है, मून के साउथ पे सोच रहे हैं, जहाँ पे अगर पानी उस मात्रा में जो कि एस्टिमेटेड है उस मात्रा में मिलता है, तो एक कॉलोनी सी बनाई जा सकती है वहां पे. वहां पे जो एस्ट्रोनॉमी के टेलीस्कोप्स लगाए जा सकते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर जो वहां पे बहुत ही कम है, एटमॉस्फेयर सिर्फ दिन के टाइम पे थोड़ा सा पाया जाता है. तो बिना एटमॉस्फेयर के एक्सपेरिमेंट्स करने का वो बिल्कुल ही अलग तरह का जो साइंस है वो बेसिकली सामने आएगी दुनिया.
जी बिल्कुल. और यहाँ पर एक बात और आपसे पूछना चाहूंगी कि चांद पर तो लैंडिंग हुई, क्या इसी तरह का एक्सपेरिमेंट इसरो मार्स के लिए भी कर सकता है? वहाँ भी इसी तरह लैंडर और रोवर की संभावना है?
जी बिल्कुल. तो अभी इसरो के जो कुछ मिशंस हैं, उनमें से जैसे आपने बताया एक गगनयान है और उसके कुछ फेसेस हैं. तो गगनयान एक मैन्ड मिशन होगा इन द एंड. गगनयान 1 गगनयान 2 में अनमैन्ड मिशन होगा, जिसमें हो सकता है कि किसी उसमें एक जानवर को बिठा कर भेजा जाए. पर जो गगनयान के अलग अगले फेजेस हैं, गगनयान 3 या 4 में, उसमें एक मैन्ड मिशन होगा. और फर्दर आई थिंक ये साइमल्टेनियसली चलते हैं बड़े सारे प्रोजेक्ट्स. तो जैसे मार्स में रोवर लैंडिंग, ये भी एक प्रोजेक्ट है. हम ऑलरेडी मार्स के पास पहुंच चुके हैं. हमारा जो एक मार्स मिशन था वो मार्स के अराउंड चक्कर लगा रहा है, लेकिन हम अभी तक वहां पे लैंड नहीं कर पाए हैं. तो ये एक अनदर एक अलग मिशन है जो मार्स पे भी रोवर भेजने का मिशन.
जी.
और बहुत सारी चीजें चल रही हैं इसमें, और आई थिंक बच्चों के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम होने जा रहा है.
जी बिल्कुल, बहुत अधिक संभावनाएं हैं भविष्य के लिए. आखिर में आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी, कोलैबोरेशन की जब बात होती है तो क्या ये समय है कि भारत आर्टेमिस प्रोग्राम के साथ में जुड़ जाए?
जी बिल्कुल. भारत अभी बहुत सारे जो वैज्ञानिक प्रोग्राम्स हैं उनके साथ जुड़ रहा है, बहुत सारी कंट्रीज के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं. और जब मैं कोलैबोरेशन की बात करता हूँ तो साइंस को अगर हम देखें तो वो चलती ही कोलैबोरेशन के साथ है. साइंस किसी एक देश की नहीं होती है कभी भी, वो हमेशा इंटरनेशनली जो वैज्ञानिक होते हैं काम करते हैं. तो जैसे आपने देखा चंद्रयान 3 में भी एक नासा का छोटा सा एक्सपेरिमेंट है.
जी.
और सिमिलरली भारत ने भी पहले बहुत सारी जो स्पेस एजेंसीज है उनकी मदद ली है. अभी भी जैसे कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उसमें मदद की है बहुत सारे देशों ने, जो चंद्रयान 3 से सिग्नल रिसीव करने के लिए कई स्पेस एजेंसीज ने इसमें सहायता की है. तो साइंस कोलैबोरेशन से ही चलती है, डाइवर्सिटी से चलती है, इंक्लूसिविटी से चलती है, और यही मूल मंत्र है विज्ञान.
जी बिल्कुल. निखिल जी, आज आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी.
जी बिल्कुल अनिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद.
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद. हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं.